भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तुओं के देखने की चाह पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखते अघाते नहीं। भौतिक कलमश के कारण संसार में हम जितनी उत्कटता का अनुभव करते हैं वह तुष्ट नहीं हो पाती, किंतु जब देखने सुनने स्पर्श करने आदि की हमारी इच्छाएं भगवान को तुष्ट करने के लिए होती हैं तो वे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करती हैं। यद्यपि अपने शाश्वत रूप में भगवान भक्त के हृदय को इतने सुंदर और मोहक लगने वाले होते हैं, किंतु वह रूप निर्विशेषवादियों को जो उनके निराकार रूप का चिंतन करना चाहते हैं आकृष्ट नहीं कर पाता। ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ है। वास्तविक योगी अपने अधिक खुले नेत्रों को किसी शून्य या निराकार में स्थिर न करके भगवान के स्वरूप पर स्थिर करते हैं। अब आगे क्या है? भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। शाश्वत रूप से मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान जो है कभी सुंदर लगे और कभी सुंदर ना लगे। भगवान हमेशा सुंदर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सुंदर बनने के लिए हमें कुछ यहाँ पर सुंदर बनने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है और कुछ चीजें जो है अपने जो है ना विशेष रूप से सजानी पड़ती हैं। लेकिन भगवान हमेशा के लिए शाश्वत रूप से सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। वे सदैव किशोर रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए अत्यंत आतुर रहते हैं। अपि च दर्शनम सस्वं सर्वलोक नमस्कृतम संतम मयसी कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम। कातर में रूपा लिखते हैं सर्वलोक नमस्कृतम का अर्थ है कि वे प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्राणी द्वारा पूज्य हैं। इस भौतिक जगत में और वैकुंठ में भी असंख्य लोक हैं। इन लोकों में से हर एक में असंख्य वासी हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादियों को छोड़कर वे अन्य सबों के द्वारा पूज्य हैं। परमेश्वर अतीव सुंदर है। शाश्वत शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वे भक्तों को तो सुंदर लगते हैं किंतु आखिरकार निराकार होंगे, ऐसा नहीं है। शाश्वत का अर्थ है सदैव विद्यमान। ये सौंदर्य क्षणिक नहीं है, ये चिरस्थाई। वे नित्य किशोर रहते हैं। ब्रह्म संहिता में भी 5:33 कहा गया है अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। मूल पुरुष अद्वितीय है फिर भी वे कभी वृद्ध नहीं होते। वे सदैव तरुणावस्था में हरे भरे लगते हैं। भगवान की भावभंगी से लगता है कि वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं, किंतु अभक्तों के प्रति वे मूक रहते हैं। मूक मतलब गूंगे। अभक्त जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है यद्यपि श्री भगवान होने के कारण वे सबों पर संभाव रखते हैं क्योंकि सभी जीव उनके पुत्रवत हैं, किंतु जो लोग भक्ति में लगे हैं वे उन पर विशेष कृपालु रहते हैं। इसी भाव की यहाँ पुष्टि हुई है कि वे भक्तों को सदैव आशीर्वाद देने के लिए आतुर रहते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर आशीषों की वर्षा करने के लिए आतुर रहते हैं। और ध्यान क्या करना है? भगवान के यश का। भगवान का यश बंद नहीं है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान और उनके भक्तों का ध्यान करें। उसे तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम ध्याये देवम समग्रांगम यावन्ना चवते मनः। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं मनुष्य को निरंतर अपना ध्यान भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। जब वह भगवान के असंख्य रूपों कृष्ण विष्णु राम नारायण आदि में से किसी एक का चिंतन करने का अभ्यस्त हो जाएगा तो उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। भक्तगण विशेष रूप से श्याम सुंदर के सुंदर श्याम रूप का दर्शन करते हैं, यही योग की सिद्धि है। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक मन क्षण भर भी ना चलायमान हो। विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर होता है। जब भक्त मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। मंदिर में भगवान की पूजा तथा भगवान के रूप का ध्यान इन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि भगवान का स्वरूप वही रहता है चाहे वह मन में प्रकट हो या किसी सीमेंट या गाड़े के रूप में। भक्तों के दर्शन के लिए 8 प्रकार के स्वरूपों की संस्तुति की गई है। ये स्वरूप बालू मिट्टी काष्ठ या पत्थर के बनाए जा सकते हैं या इनका मन में ध्यान किया जा सकता है, या रत्नों, धातु या विविध रंगों से बनाया जा सकता है, किंतु इन सब रूपों का एक सा महत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई किसी रूप का मन में ध्यान करता है तो मंदिर में पूजा किए जाने वाले रूप से वह भिन्न होता है। भगवान परम है, अतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत रूप की अवहेलना करके किसी गोलाकार रूप शून्य की कल्पना करते हैं। वे विशेष रूप से ओंकार को वरीयता प्रदान करते हैं, किंतु उसका भी स्वरूप होता है। इसी प्रकार भगवान की मूर्तियां तथा चित्र भी हैं। आगे कपिल भगवान कहते हैं, इस प्रकार भक्ति में सदैव लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर और आकर्षक होती हैं। स्थितम मृदंतम आसीनम शयानम वागुहाशयम प्रेक्षणीय हितम ध्यायेन छद्मभावेन चेतसाम। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, अपने मन से भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की विधि तथा भगवान के यश और लीलाओं के कीर्तन की विधि एक समान है। अंतर केवल इतना है कि भगवान की लीलाओं को सुनना और मन को स्थिर करना मन के भीतर भगवान के रूप का ध्यान धरने की अपेक्षा सरल है, क्योंकि इस युग में जब भी कोई भगवान का चिंतन करने लगता है तो मन विचलित हो जाता है और इस प्रकार क्षोभ से मन के भीतर भगवान को देखने की विधि में गतिरोध आ जाता है। किंतु जब भगवान की दिव्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए शब्दोच्चार किया जाता है तो हम सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है और योग का अभ्यास स्वतः संपन्न हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि भगवान द्वारा गोचारण के लिए अपने गौओं तथा मित्रों के साथ चारागाह तक जाने का वर्णन भागवत से पढ़ा जा रहा हो और यदि उसे कोई बालक भी सुने तो उसे सुनने से ही भगवान की लीलाओं के ध्यान का लाभ प्राप्त हो सकता है। सुनने में मन लगाना भी सम्मिलित है। भगवान चैतन्य ने संतुति की है कि मनुष्य को सदैव भगवत गीता का कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि महात्माओं को चाहिए कि वे भगवान की महिमा के कीर्तन में लगे रहें, जिससे अन्य लोग सुन करके ही वही लाभ उठा सकें। योग के लिए भगवान के दिव्य लीलाओं का, चाहे वे खड़े हों, चलते हों या लेटे हों, ध्यान आवश्यक है। आगे कपिल भगवान कहते हैं, भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर विचार करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। तस्मिन् लब्धं पदं चित्तं सर्वावयवे संतितं विलक्ष्य तत्र संयोज्यां अंगे भगवतो मुनिः। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, मुनि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनि वह है जो चिंतन, अनुभव तथा इच्छा करने में अत्यंत पटु। यहाँ पर उसे भक्त या योगी नहीं कहा गया। जो लोग भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं वे मुनि या अल्पज्ञ हैं, किंतु वे जो भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं भक्ति योगी कहलाते हैं। आगे जो विचार विधि पंडित है वह मुनियों की शिक्षा के लिए है। योगी को यह विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, निम्नलिखित श्लोक भगवान के अंग अंग प्रत्यंग देखने की संतुति करते हैं। भगवान का समग्र रूप में चिंतन कभी कभी निराकार हो सकता है, अतः यह संतुति की गई है कि पहले उनके चरण कमल का ध्यान किया जाए, फिर टखने, फिर जंघा, फिर कमर, फिर छाती, फिर गर्दन, फिर मुख इत्यादि। भगवान के चरण कमल से प्रारंभ करके क्रमशः उनके दिव्य शरीर के ऊपरी अंगों तक जाया जाए। अब कैसे भगवान के चरण कैसे हैं? भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमल में केंद्रित करे, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। भगवान के चरण में ये चिन्ह है। उनके सुंदर माणिक से नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करने वाली है। गहन माने घोर, तम माने अंधकार। हृदय के घोर अंधकार को दूर करती है। क्या? उनके चरण कमल के नाखून, नाखूनों में चंद्रमा का प्रकाश। जैसे चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, ऐसे उनके जो है चरण के जो नाखून है हृदय के घोर अंधकार को दूर करते हैं। संचिन्तये भगवत चरणारविन्दम् वज्रांकुश ध्वजस् सरोरुह लांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन् नख चक्रवालिम् ज्योत्नाभिराहतहि महन् हृदयांधकारम्। तात्पर्य प्रमल के हैं। यहाँ पर भगवान के शाश्वत रूप का ठोस वर्णन दिया गया है। भगवान के चरण तल को वज्र पताका कमल और अंकुश की आकृतियों से मिलने वाली स्पष्ट रेखाओं से युक्त अंकित किया गया है। उनके पैर के नाखूनों की कांति चंद्रमा के प्रकाश के तुल्य है। यदि योगी भगवान के चरण तल पर अंकित चिन्हों और उनके नाखूनों की चमक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह संसार के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो सकता है। ये मुक्ति ध्यान से नहीं, अभी तो भगवान के नाखूनों की कांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई इस संसार के अज्ञान अंधकार से छूटना चाहता है तो उसे पहले अपना मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना चाहिए। अब देखो भगवान के चरणों की और क्या विशेषता है। अभी तो बताई कि उनके चरण में जो है वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चिन्ह है। और क्या विशेषता है, उनके नाखूनों से चंद्रमा का प्रकाश निकलता है जो हृदय के अंधकार को दूर करता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भासुता, कि ज्ञान के जो है ना प्रकाशमान दीपक के द्वारा मैं हृदय का अंधकार दूर करता हूं। तो यहां पर वो बताया कि वो ज्ञान का प्रकाशमान दीप है क्या, उनके चरण के नाखून का प्रकाश ही है, वही है ज्ञान का दीपक, हृदय का अंधकार दूर करता है। और उनके चरण की और क्या विशेषता है, पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य बन गए। शिव जी की ज्यादा पूजा होने लगी, क्यों, क्योंकि उनके भगवान के चरण के जल से यानी गंगा जी से अपने सिर को धोते हैं। इसलिए भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। भगवान के चरण की और विशेषता क्या है, वज्र है। वज्र छोटा सा होता है और बड़ा भारी पहाड़ को पाउडर कर देता है वज्र। तो इस भगवान के चरण है तो छोटे और हमारे पाप का जो पहाड़ है वो बहुत बड़ा है। तो भगवान का छोटा सा चरण जो है ना हमारे पाप के पहाड़ को क्या कर देगा, पाउडर बना देगा, भस्म कर देगा, है ना। तो ये भगवान के चरण की विशेषता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। यच्छोचन स्थित सरे प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनिकृतेन सेवा सेवो भू ध्यातुर्मना समन शैल निश्रेष्ठ वज्रम ध्याये चिरं भगवतं चरणारविंदम। तात्पर्य प्रभा लिखते हैं, इस श्लोक में शिव जी की स्थिति का विशिष्ट वर्णन हुआ है। निर्विशिष्टवादी का सुझाव है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं होता, अतः हमें विष्णु या शिव या देवी दुर्गा या उनके पुत्र गणेश किसी के भी स्वरूप की समान रूप से कल्पना कर सकता है, किंतु वस्तुतः भगवान हर प्राणी के परम स्वामी है, है ना। तो शिव जी भी जो ना उनके चरण कमल का जो जो जल है उसको अपने सिर में चढ़ाते हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि शिव जी और विष्णु ये समान, कैसे कह सकते हैं, है ना। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सभृत परमेश्वर कृष्ण है और अन्य सभी जिनमें शिव और ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं कृष्ण के दास हैं, अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। यहां पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है। शिव जी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपने सिर के ऊपर पवित्र गंगा जल धारण करते हैं जिसका उद्गम भगवान विष्णु का चरण प्रक्षालन है। अच्छा आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यहां पर भगवत चरणारविंदम का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है जिसका अर्थ है कि मनुष्य को भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना है। मायावादी लोग सोचते हैं कि मनुष्य शिव ब्रह्मा या देवी दुर्गा में से किसी के चरण कमलों का चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। यहां पर भगवता का विशेष उल्लेख है। भगवता का अर्थ है भगवान विष्णु का। अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण शिवजी सदैव महान और कल्याणप्रद रहे हैं, किंतु चूंकि उन्होंने अपने स्तर पर उस गंगा जल को धारण करना स्वीकार किया है जो भगवान के चरण कमलों से उद्भूत है, अतः वे और भी अधिक शुभ और महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान के चरण कमलों पर बल दिया गया है। भगवान के चरण कमलों से संबंधित होने के कारण जब शिव जी की महत्ता बढ़ी है तो सामान्य जीवों के विषय में क्या कहा जाए। अच्छा तो इतनी तो बात हुई भगवान के चरण कमल की। अब इसके आगे कपिल भगवान क्या कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह अपने हृदय को सभी देवताओं द्वारा पूजित और परम पुरुष ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों और जंघाओं को चांपती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार भी उनकी सावधानी के साथ सेवा करती हैं। जानो द्वयम् जलज लोचनया जनन्याम लक्ष्म्या खिलस्थ सुर वंदितया विदातु उर्वोर निधाय कर पल्लव रोचि सायन संलालितम हृदि विभो रघुवश्य कुरियान। तो अब क्या चिंतन करना है, भगवान की जंघाओं का। जंघा मतलब ये इसको क्या बोलते हैं जो घुटने के नीचे होती है, संस्कृत में उसको जंघा बोलते हैं या जानू। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, पिंडली, पिंडली बोलते हैं। तो पैर के ऊपर ये, चरण के ऊपर पिंडली है, इसका ध्यान करें। लक्ष्मी जी अपने कर कमलों से दबाती हैं भगवान के इन पिंडलियों को, तो ये ध्यान का विषय है। तात्पर्य प्रबल लिखते हैं कि चूंकि दिव्य आचरण संसारी आचरण से भिन्न होता है, अतः ये नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान अपनी पत्नी से वैसे ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य अपनी पत्नी से कराता है। यहाँ ये सलाह दी गई है कि योगी सदैव अपने हृदय में ये चित्र रखे, भक्त सदा ही लक्ष्मी तथा नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करता है, अतः वह निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की तरह मानसिक ध्यान नहीं करता। ये कोई कल्पना नहीं है, लक्ष्मी जी हैं भगवान की पत्नी, तो उनके चरणों को जो है ना वो दबाती हैं। आगे फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, उसको उरु कहते हैं संस्कृत में, उरु। तो पिंडली से ऊपर फिर उरु है। जो समस्त शक्ति की आगार है वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली हैं, और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान करे। अब जंघा के ऊपर नितंब है, नितंबों का ध्यान करे जो करधनी से घिरे हुए हैं, और ये करधनी भगवान की एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। उरुष पर भुजयो रधिशो अभिमानं वो जो निधि अतधिका कुसुमा भासो व्यालंबि पीत वरवासि वर्तमानं कांची कलाप परिरंभितं बिंबम। इसके बाद योगी को चाहिए कि भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करें। देखा, जंघा से आप नाभि में आ गए। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमल नाल प्रकट हुआ। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनों पर केंद्रित करना चाहिए। नाभि से स्तन पर आ गए। जो श्रेष्ठ मरकत मणि के जोड़े के सदृश हैं और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती हैं। माला से जो ना ये भगवान के जो स्तर हैं वो बहुत ही चमक रहे हैं। नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयोनिधिषणा खिल लोके पद्मम व्योढम हरिर्मणिवृषस्तन योरमुष्यम ध्यायेद्वयम् विशदहार मयूख गौरम। तात्पर्य में प्रोपर लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के प्रत्येक अंग में अन्य किसी भी अंग की शक्ति रहती है, क्योंकि सब कुछ आध्यात्मिक है, अतः उनके अंग भी बद्ध नहीं है। भगवान अपने कानों से देख सकते हैं, जबकि भौतिक कान केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता, किंतु ब्रह्म संहिता से हम जानते हैं कि भगवान अपने कानों से भी देख सकते हैं और आंखों से सुन सकते हैं। उनके दिव्य शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। अच्छा, अब ये तो हुआ वक्षस्थल। अब वक्षस्थल में और बता रहे हैं ध्यान करना है। फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। अच्छा, स्तन, अभी तक स्तन था ना, स्तनों से फिर वक्ष, स्तनों के ऊपर वक्ष है, तो वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए जो जिसमें कौन निवास करती हैं, महालक्ष्मी निवास करते हैं। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद और नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में अब वक्षस्थल के ऊपर क्या है, गर्दन, गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। गर्दन में क्या है, कौस्तुभ मणि। वक्षो धिवा स्मृतिभस्य महाविभूते पुंताम मनोनयन निर्विधिमादधानम् कंठम च कौस्तुभ मणि दधि भूषणार्थम कुरियान मनस्य खिल लोके नमस्कृतस्य। तात्पर्य रूप लिखते हैं, भगवान की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, ना कि मणि से गर्दन की सुंदरता बढ़ती है। सामान्य रूप में क्या होता है कि आभूषण आपके शरीर को सुंदर बनाता है, लेकिन भगवान का उल्टा है। भगवान का शरीर आभूषण को सुंदर बनाता है, है ना। मणि स्वयं अधिक सुंदर है क्योंकि भगवान की गर्दन में स्थित है, इसलिए योगी को भगवान की गर्दन का ध्यान करने को कहा गया है, है ना, जो मणि को सुंदर बना रही है गर्दन। फिर भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जा सकता है या फिर मंदिर में मूर्ति के रूप में रखकर एवं इस प्रकार से अलंकृत करके जिसे सभी लोग ध्यान कर सकें। अच्छा, अब गर्दन के बाद कहां पर आना है? भुजाओं में। गर्दन के बाद भुजाओं। इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से और असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है। तो भगवान के जो है ना भुजाओं का ध्यान करना, फिर भुजाओं के बाजूबंदों का ध्यान करना है। वो बाजूबंद घिस गए हैं, कैसे? मंदर पर्वत को जब घुमाया तो वो रगड़ रहा था उनके बाजूबंदों से, तो बाजूबंद उनके घिस गए हैं मंदर पर्वत के रगड़ने से, है ना। और उसके बाद फिर उनके कंगनों पर ध्यान करना है, और फिर चक्र का ध्यान करना है, और संघ का ध्यान करना है उनके हाथ में है जो। तो गर्दन से कहाँ गए? भुजा में, भुजा से बाजूबंद, बाजूबंद से फिर कंगन, कंगन से फिर उनके हाथ के आयुध संख और चक्र। बाहू च मंदर गिरे परिवर्तन निर्णय बाहुबलियान दिलोक पाल संचिते सतारे मसह तेज हम शंखम च तत्कर सरोरुह राजे हंसम। अच्छा, अब क्या ध्यान करना है? भगवान की गदा का ध्यान करना है। योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। ये गदा शत्रु सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। गदा में खून लगा हुआ है। ध्यान करो, क्या भगवान की गदा का जिसमें शत्रु का खून लगा हुआ है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए। अब गदा से फिर आगे कहां? गले में, फिर गले में आ गए। सुंदर माला का ध्यान करना चाहिए जिसमें मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। कौमोदकी भगवतो दयिता स्मरेत दिग्धाम राति भट श्रोणित करतमेन माला मधु व्रत वरुथ जरोप घोष्टाम चैत्यस्य तत्त्वम बलम मणिमस्य कंठे। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं कि गदा जो असुर हैं और परमेश्वर की लीलाओं के प्रति शत्रुता रखते हैं, उन्हें वे अपनी गदा से दंड देते हैं। जो सदैव ऐसी पतित जीवात्माओं के रक्त से सनी रहती है, ये गदा भगवान को प्रिय है क्योंकि वे इसे आसुरी शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को पानी के साथ सामने से कीचड़ बन जाता है, समझे, उसी प्रकार शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं, जिससे उनकी गदा ऐसे असुरों के रक्त से गंदली हो जाती है। वो गदा गंदली गंदी है। भक्त को चिंतन करना चाहिए किससे? शत्रुओं के रक्त से गंदली है भगवान की गदा, कीचड़ से सनी है। ऐसी गदा का ध्यान करें तब योगियों को भगवान के, अब देखो, गदा से गर्दन में आए और गर्दन से फिर आ गए मुख में। भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपा बस अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। मुख का ध्यान करें और फिर नासिका। नाक उनकी अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकाकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। मुख, नासा और गाल, इनका ध्यान करें। और गालों में क्या विशेषता है कि कान में जो कुंडल है मकर की आकृति के वो हिलते हैं तो गाल जो है बहुत सुंदर लगते हैं, उनके प्रकाश पड़ता है गालों में। भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्ति संचिन्तयेत् भगवतो वदनारविन्दम् यद् विस्फुरन् मकर कुंडले वल्गितेन विद्योतितामल कपोल मुदारे नासम। तात्पर्य प्रभा लेते हैं, भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के भक्त को प्रिय हो। भगवान के लाखों रूप हैं किंतु वे सब एक हैं। अब योगी को ध्यान करना है क्या, सुंदर मुख मंडल का ध्यान करना है। अभी तो मुख का, नासिका और गालों का ध्यान किया, आप पूरे मुखमंडल का, मुखमंडल ये मुखमंडल और मुख ये है ना, मुख नासा गाल ये अलग अलग है और मुखमंडल क्या है पूरा। तो मुखमंडल का ध्यान करता है जो घुंघराले बालों से सुशोभित है, मुखमंडल में बाल घिरे हुए और कमल जैसे नेत्र और नास्ती बहुत सुशोभित है, भ्रुकुटी नृत्य करती है भगवान की। इसकी शोभा के आगे भौरों से घिरा कमल और तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। कमल कुछ भी नहीं है। श्रीनिकेतमल भी परिसे विमान भूत्या सोया कुटिल कुंतल बृंद जुष्टम मीने दुयाश्रय मधिक्षिप पद्यन मीने दुयाश्रय मधिक्षिप दब्ज नेत्रम ध्याये मनोमय मदनृत उन्लसद्रुम। इसके बाद योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण भक्ति भाव से करे। अब क्या भगवान की चितवन कैसे देखते हैं भगवान, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह है तीन प्रकार के कष्टों का समान होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। तस्यामलोकमदिकृपयाति घोरे तापत्रयोपशमनाय निसृष्टमक्षणो स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुल प्रसादं ध्याये चिरं विपुल भावनया गुहायां। इसके बाद ध्यान करो भगवान का क्या, उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। अभी तक कितने जन्मों में शोक के अश्रु जो बहाए हैं आपने, उनका एक समुद्र बन चुका है। आपको पता है आपके आंखों से जितने अश्रु बहे हैं कई कई जन्मों में, उन अश्रुओं का एक समुद्र बन चुका है, ठीक है ना। और वो समुद्र जो है ना भगवान की मुस्कान से सूख जाता है, क्या समझे। वो अश्रुओं का समुद्र जो कई कई जन्मों में आपने बहाए हैं आंसू, वो समुद्र जो है ना सूख जाता है, कैसे, भगवान की मुस्कान से सूख जाता है। जो उनको नमस्कार करते हैं तो जो भगवान को नमस्कार करते हैं तो भगवान अपनी मुस्कान से उस शोक के समुद्र, शोक के अस्त्रों के समुद्र को सुखा लाते हैं। उसे भगवान की अकुटिल भावों का ध्यान करना चाहिए। टेढ़ी भ्रुकुटी जो मुनियों की भलाई के लिए, कामदेव को मोहने के लिए भगवान भौहें टेढ़ी करते हैं। हासम हरे रमन ताखिल लोक तीव्रम शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायाशम भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य। अब ध्यान करें भगवान का क्या, योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करें। अभी तो मुस्कान थी, अट्टहास 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 कराता है। मुस्कान में तो आवाज नहीं होती है, चेहरा केवल खिला हुआ रहता है। अट्टहास में क्या होता है, आवाज निकलती है। अट्टहास उनका यह अट्टहास कितना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेले की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके ओठों की कांति के कारण गुलाबी हो जाते हैं। ओठ लाल है तो उनकी कांति से दांत भी क्या हो गए, गुलाबी हो गए। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। ध्यानायनं प्रहसितं बहुलहाधरोष्ठं भासारुणाय तनु द्विजकुन्द पंक्तिः ध्याये स्वदेह कुहरे वसितस्य विष्णुर् भक्त्यार्द्रयार्पित मनाना पृथ्वीं दृक्षेन। इसके बाद इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और तीव्र प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है, जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए बंसी प्रयुक्त की जाती है। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भाव भक्त्याद्रवृदय उत्पुल का प्रमोदा औत्कंठ बाष्प कलया मोहरर्धमान तच्चाप चित्त बड़िसम सनकेर व्योंके। जब इस प्रकार मन समस्त भौतिक कलमश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। दीपक की लौ जहां हवा नहीं है तो दीपक की लौ सीधी होती है और प्रकाश पैदा करती है, उसी प्रकार मन जो है ना स्थिर हो जाता है और प्रकाशमान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे एकाकार अनुभव किया जाता है, क्योंकि भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। मुक्ताश्रयम् यर्हि निर्विषयम् विरक्तम् निर्माणमृच्छति मनः सहसा यथाचिः आत्मानमत्र पुरुषो व्यवधानमेकम् अन्वेक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की ध्यान योग की, क्योंकि इन तीन श्लोकों में भगवान कहते हैं ध्यान योग प्रवृत्तियम, ध्यान योग के हमेशा परायण है। तो कपिल भगवान ने विस्तार से जो भगवान के रूप का ध्यान का वर्णन किया है तो वो हमने आपको पढ़ के सुनाया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की।